Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yadeveha tadamutra dasamantra yadamutra tadanviha mrityoho samrityumapnoti ya iha naneva pashyati. नाना इव पश्यति। तो कहते हैं कि जो यहां है वही वहां है, अर्थात जो तत् यद यद एव इह इह लोक ऐहिक बोलते हैं ना, तो कहा कि जो तत्व यहां है अर्थात आपके देह इंद्रिय कार्य करण में भासता है वही अन्यत्र देहादि से परे भी है। तद अमूत्र, तब वह देहादि से परे भी है, और यद अमूत्र और जो अन्यत्र है तद अनु इह तद अन्विह वही इसमें भी है, जो वहां है वही इसमें भी है। और मृत्यो समृत्युमाप्नोति यह इह नानी, जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है, नाना इव पश्यति अर्थात नाना के समान देखता है। इव का बड़ा महत्व है, अनुवाद में नहीं लिया गया जो मंत्र का अनुवाद है, तो इस तत्व में नानात्व जैसा देखता है। इव शब्द हमारे वेदांत को सिद्ध करता है, जो हम लोग विवर्ती निमित्त उपादान कारण बोलते हैं ना, तो विवर्त को दिखाता है हमेशा। यह इह नाना इव पश्यति, जो तत्व में नाना देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, नाना के समान जो देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। ये मंत्र में बात कही, और भाष्यकार भगवान ने इसकी जो इसके पूर्व जो भूमिका ली वह हम लोगों ने देखी थी कि जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत और सब भूतों में वर्तमान है, और लेकिन वह भिन्न भिन्न सा दिखता है उपाधियों के कारण। अब्रह्मवत अवभासमानम, अब्रह्म के समान वह दिखता है और संसारी हो जाता है, पृथक पृथक हो जाता है, और इस प्रकार वो संसारी जीव पर ब्रह्म से भिन्न दिखने लगता है। तो ऐसी किसी को आशंका न हो जाए, क्योंकि यहाँ जितना प्रतिपादन हुआ उसको लेकर एक यह शंका रह सकती थी, तो इसलिए यमराज इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि पहले तो जिसकी बुद्धि में बहुत सी धारणाएं बैठी होती हैं, उनके लिए बड़ा कठिन होता है। तो किस प्रकार की धारणा बैठी होती है, तो वो ये समझते हैं कि ईश्वर दूसरे लोक में रहता है। ये धारणाएं अनेक मत संप्रदायों में है, वह स्वर्ग में रहता है, यह भूलोक में भला क्यों कर आएगा, मृत्यु लोक में क्यों कर आएगा, वह वैकुंठ में रहता है, उसका एक दिव्य राज्य है, वह सातवें आसमान में रहता है, और इसलिए मूर्त कभी होता ही नहीं, वह मूर्त कभी नहीं होता है। तो मूर्ति का विरोध करेंगे, क्योंकि ईश्वर बहुत दूर रहता है और मूर्त कभी नहीं होता है। अथवा एक आएंगे हमारे योगी लोग, वो कहेंगे कि वो समाधि में रहता है और इसलिए वह आकार में आ ही नहीं सकता, वह किसी आकार को कभी नहीं प्राप्त होता। एक कहेंगे भाई गहराई में घुस कर देखो, गहराई में डूब कर देखो। अभी तो आप सुन रहे थे कि वो यह भी एक भ्रांति होती है, तो बोले हृदय कमल है, महाराज जी दृष्टांत दे रहे थे कि हृदय कमल है और उसमें भौरे की तरह इस मन को बिठा दो, तो ऐसे ऐसे दृष्टांत दे रहे थे। तो क्या है कि ये सब जो विचार होते हैं इसमें अनुभूति की सत्यता नहीं होती, अनुभूति का बल नहीं होता है, और जिसको जिसके पास अनुभूति की स्पष्टता होती है वह शूली में चढ़ते हुए भी अनल हक कहता है, अर्थात मैं वही सत्य हूँ, मैं वही चैतन्य हूँ, मंसूर। तो अब क्या है कि एक बार एक जापानी संत थे जापान के, तो जहां भी विपत्ति आई तो उनको ऐसा परमार्थ वस्तु का अनुभव हुआ कि वह निर्विशेष है, निर्विकल्प है, निष्प्रपंच है, ऐसी वस्तु का उन्हें अनुभव हो गया। तो उन्होंने सोचा कि यह अनुभव यह तो सबको हो जाना चाहिए, क्योंकि सत्य यही है, तो भ्रम में मनुष्य क्यों घूमे। अब किसी को समझाए समझे नहीं, तो उनकी बुद्धि में एक विचार आया कि हम राजा को यदि समझा देते हैं तो प्रजा भी समझ जाएगी, इसलिए उपयोगी यह होगा कि राजा को बताओ। तो राजा को समझाएं कि वह निर्विशेष है, निर्विकल्प है, निष्प्रपंच है, ऐसे करके विचार करो तुम वहां चलो। तो राजा ने कहा कि हमें ये बताओ कि उस परमार्थ में पवित्रता होती है कि नहीं, हमें पवित्रता की बात बता दो। तो अब संत ने कहा कि वो परमार्थ तो ऐसा है जिसमें पवित्र और अपवित्र कुछ नहीं रह जाता, उसका भेद नहीं रह जाता है। तो राजा ने कहा कि फिर ऐसे परमार्थ से क्या फायदा। अब बड़े कर्मकांडी होते हैं, उनके सामने यही प्रश्न आ जाता है। तो संत ने सोचा कि भूल कहाँ हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि भूल यह हो रही है कि हम दूसरों को समझाना चाहते। संतो देखो जग बौराना, सांझ कहूं तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। तो हम दूसरों को जो समझाने जाते हैं वही वहां पर ही भूल होती है। तो उन्होंने कहा सबसे मौज की बात है कि अपना संकल्प ही छोड़ दो कि हम दूसरों को सबको यह परमार्थ सत्य समझा लेंगे। एक बात है, वह भी एक पक्ष है, लेकिन अभी जब हम विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि इस देश के ऋषि मुनियों ने उस अद्वितीय तत्व को, उस निर्विशेष तत्व को भी किस युक्ति से कैसे समझाया। इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं कि ऐसे गुरु के पास जाओ जो श्रोत्रिय हो, अर्थात श्रुति के तात्पर्य को, इस उपनिषद के तात्पर्य को, इस ब्रह्म विद्या का जो निरूपण कर सके। तो भूल क्या होती है हम सबकी, तो कहा कि हम उस तत्व का भी कुछ विशेषीकरण करते हैं, कुछ उसको विशेष बनाते। पवित्र अपवित्र एक एक गुण लिया गया, पर कहीं ना कहीं हम उसको विशेष बनाने जाते हैं। थोड़ा अपनी बुद्धि को ऐसे हिला लेना, जिसको बोलते हैं झकझोर देना थोड़ा सा, और विचार करते चलना। जब हम कहते हैं हम कैसे बन जाएं, हमें क्या होना होगा, क्या हमें सन्यासी होना होगा, क्या हमें गेरुए कपड़े पहनने होंगे इत्यादि, तो जहां आप बनना लगा लेते हैं, जहां आप होना लगा लेते हैं, वहीं आप अपने आप को कुछ विशेष बनाकर प्रस्तुत करने लगते हैं। क्योंकि जो तत्व है वह तो है, और जब होना आता है तो उसमें कृत्रिमता आ जाती है, उसमें एक बनावट आ जाती है। जहां आप बनने जाते हैं वहां बनावट आ जाती है। जैसे एक दृष्टांत लें, एक कहते हैं कि दुख का निवारण करना चाहिए, अर्थात किसी में दुख ना हो, सबके दुखों का निवारण करो, उन्हें क्या दो, कहा स्वास्थ्य दो, औषधि दो, वो सब ठीक है, सब अपनी जगह है, उन्हें शिक्षा दो, रहने के लिए मकान दो, तो वो उसी में दुख देखते हैं। और इसलिए बहुत से लोग सुविधा को सुख समझते हैं, सुविधा में कभी सुख नहीं होता, क्योंकि शरीर स्वयं, जिस शरीर को आप सुविधा देते हैं वह शरीर स्वयं ही एक असुविधा है, और उसको तो उसको लेकर आप विचार करते हैं। तो कहा कि दुख का निवारण करो एक प्रश्न है, और हम दुखी ना हो और किसी को दुख ना दें, यह दूसरा प्रश्न है, अर्थात दूसरा विचार है। तो विचार के विचार में आप देखिए, हम किसी को दुखी नहीं होने देंगे तो आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे, उसमें एक आंदोलन होगा। अभी कल एक माता आई थी, बता रही थी कि एक किसी स्थान में बहुत सारे कुत्तों को मारा गया, तो लोग आए बोले उसमें लगो, तो बोली कि हम तो इसमें लगेंगे तो हमारी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा संसार में, तो हम भगवान की भक्ति कब करेंगे। कोई विवेक होता है, भक्ति में भी विवेक होता है। तो हम सबको सुखी करेंगे, दुख नहीं होने देंगे, ये बहुत बड़ा एक आंदोलन है। भगवान कहते हैं गीता में, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चय, जिससे ये लोक उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता उसको भगवान भक्त बता रहे हैं, ज्ञानी भक्त। तो इसमें क्या हुआ कि हम दुखी नहीं होंगे, अर्थात हम उस सत्य को समझ लेंगे जिसमें कोई दूसरा है ही नहीं और कोई हमें दुख नहीं दे सकता, और फिर हम अपनी ओर से भी किसी को दुख नहीं देंगे, ये तो बात बन जाएगी। तो इस प्रकार से विचार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ यह ये अमूत्र और ये करके जो बता रहे हैं, तो यहाँ दो दो को लेकर और विचार किया जा रहा है कि दो में एकत्व कैसे है, हम में और उसमें, उसमें चाहे वह यह हो अथवा वह हो, जो भी हो। तो इसी कारण से कहा कि सब में एक तत्व को देखना, उस एकत्व को देखना, एतद्वैतद् के द्वारा जिसका इतने मंत्रों में यमराज ने निरूपण किया, उसमें कोई और गुंजाइश न रह जाए, इसलिए यह मंत्र आया है, और इसलिए यह एक शंका के निवारण का मंत्र है, और इसको समझ लेंगे तो कोई शंका नहीं रहेगी। श्री महाराज जी अपनी किशोरावस्था में एक महात्मा के पास जाते थे, उनका नाम था मोकलपुर के बाबा। तो ये लोग कुछ युवा जाते थे और उनका उच्छिष्ट, उनका जूठा भी खाते थे। अब उस समय की प्रथा, पुराने समय की बात है, तो लोगों में ये चर्चा चली कि ये किस जाति के हैं महात्मा, और हमारे बालक इनका जूठा खाते हैं। तो आप गए उनके पास और उनसे पूछा कि आप गांव में ऐसे पूछते हैं कौन दूध हो, माने कौन सी जाति के। तो महात्मा जी ने कहा कि जो मच्छर की जाति है, जो चींटी की जाति है, जो मक्खी की जाति है, जो चिड़िया की जाति है, वही मेरी जाति है। महात्मा जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर। अर्थात आप विशेष, जो विशेष नहीं बनता वह आत्म चैतन्य में रहता है, वह इतना निर्विशेष हो जाता है। उनका तात्पर्य था कि तुम जब भगवान को भोग भी लगाते हो तो मक्खी उसको जूठा करती है, चींटी उसको जूठा करती है, और तुम उसका जूठा खाते हो कि नहीं, भगवान उसका जूठा खा लेते हैं, चिड़िया जूठा कर देती है, तोता जूठा कर देता है। तो कहा कि वही हमारी जाति है, अर्थात हम सर्वात्म भाव में एक आत्म चैतन्य में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जब यह तत्व ज्ञान हो जाता है, स्वयं के लिए नहीं दूसरे के लिए भी, ये ध्यान से सुना, क्योंकि बहुत सारी फसावटें हैं। अगर हम हमारी बुद्धि में औपनिषद ज्ञान की स्पष्टता नहीं होती तो हम कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में फंसते हैं, गुणों में फंसते हैं, बहुत सी उलझने हैं, और जो आपको अटकाती हैं। तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान एक जगह, यानी एक स्थान में कहते हैं कि नहीं मोक्ष दशायां विज्ञानांतरम आनंद अंतरम वा उत्पद्यते, अर्थात मोक्ष जब होगा, किसी को तत्व ज्ञान हो जाएगा तो उसका कुछ विशेष विज्ञान हो जाएगा, या कोई विशेष उसमें आनंद की उत्पत्ति हो जाएगी, अर्थात वो कुछ दूसरे प्रकार से रहेगा, दूसरे प्रकार से खाएगा, दूसरे ऐसा नहीं है। जैसे सब रहते हैं उन्हीं की तरह वह भी रहेगा, कोई विशेषता नहीं आती। और इसी कारण से कहते हैं शास्त्रों में कि सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादर कारण। जब बहुत सन्निकट रहते हैं तो बोलते हैं ये तो हमारी जैसे खाता है, हमारे जैसे ही सोता है, हमारे जैसे, तो उसका अनादर करने लगते हैं, इसमें कोई विशेषता नहीं। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि की आदत पड़ी है कुछ विशेषता बनाने की, और इस कारण उस निर्विशेष तत्व को हम नहीं जान पाते हैं। तो यह हमारा एक स्वभाव हो गया है, बुद्धि की एक आदत पड़ी हुई, कहीं ना कहीं हम इसलिए व्यक्ति के पूजन में लग जाते हैं। सनत कुमार आदि चले जा रहे थे और उमा और भगवान शंकर को देखा नहीं, आप लोग ये कथा सुने हुए सिर्फ संक्षेप में। तो उमा भगवती ने कहा कि ऊंट की तरह मुंह उठाए जाते हो, कथा तो लंबी है, बहुत कई जन्म बताए हैं पर संक्षेप कर दिया। तो जाओ तुम और भगवान शंकर जगत के पिता हैं, इन्हें प्रणाम भी नहीं करते हो, छोटे छोटे से बालक हो, जाओ ऊंट हो जाओ। ऊंट हो गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें याद आई उमा को, तो उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि चलो चलें देखें सनत कुमार क्या कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा वो जीवन मुक्त महात्मा है, उन्हें कुछ नहीं होने वाला, वो जहां जाएंगे मौज में रहेंगे। फिर भी देखने गए तो पूछा कि कैसे हो, तो कहा कि हम तो बहुत आनंद में हैं, पहले तो ये कष्ट था जब मनुष्य थे कि हाथ मुंह धो, शौच आदि जाओ तो हाथ साफ करो, ये सब बहुत सारी झंझट थी, यज्ञोपवीत धारण करो और संध्या वंदन करो, बहुत सी परेशानियां थी, और या तो भिक्षा मांगो, भिक्षा मांगने जाओ, अब तो जिधर मुंह उठाया तो वही पत्ते खा लिए, वो तो नीम के पत्ते भी खा लिए और बबूल के पत्ते भी खा लिए, और जहां आया मन वहां पर शौच कर लिया, निवृत्त हो गए। तो कहा कि हम तो जैसे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार थे वैसे ही अब उमा पुत्र ऊंट कुमार है, हमें कोई अंतर नहीं। ये देखो ये सब कथाएं एक निर्विशेषता की ओर इंगित करती है, ये बताना चाह रहे, उसकी ओर इंगित करती है। और इसलिए स्वयं के लिए भी जहां हम ये सोचेंगे कि हम कुछ विशेष बन जाएंगे, वहीं हम आत्म चैतन्य जो सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्वावभाषक है उसके साथ सर्व सर्व जोड़ते ही इसलिए हैं कि तुम सर्व से कुछ विशेष नहीं हो, उससे अलग नहीं हो। तो यदेव तदमूत्र, जो यहां है जो तत्व इस देह इंद्रिय संघात में भासता है जो चैतन्य, वही परमेश्वर है, वही ब्रह्म है। तो एक रस सम ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और चित्त में राग आए कि वैराग्य आए, संग्रह आए कि त्याग आए, संग्रह भी आता है, त्याग की भावना भी आता है, विक्षेप है या समाधि है, रोदन है या हास्य है, जन्म है या मृत्यु है, लेकिन वह आत्म चैतन्य आपका वह एक रस रहता है। द्वंद्वों से उस अद्वैत तत्व में द्वंद्व की प्राप्ति, द्वैत की प्राप्ति नहीं होती है, वह ज्यों का त्यों रहता है। ये तो हमारा स्वभाव हो गया उपाधि के साथ बंधने का, इसलिए हम द्वैत देखते रहते हैं। यहां ये कह रहे हैं, इतना ही नहीं, जब ये कह रहे हैं कि उपाधि से वह विनिर्मुक्त है, तो आप आम अंगूर मिर्च करेला जो भी आप उपाधियों के कारण भिन्नता देखते हैं उसमें पंच महाभूत एक ही है, ऐसे भी इसको एक समझा जाता है। तो विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनके नाम अलग अलग हैं, गुण अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, अवस्थाएं अलग हैं, उनके उपयोग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन जो उसमें पंचभूत हैं वो एक ही है, चैतन्य वह एक ही है, तो चेतन वह एक ही है। अथवा ऐसे कहो कि उसमें जो आत्मा है, जो ईश्वर है, वह एक ही है। चाहे आप उसे दुश्मन कहते हो, चाहे दोस्त कहते हो, वो आपकी मनोवृत्ति दुश्मनाकार या दोस्ताकार होती है, लेकिन उस दोस्त दुश्मन के रूप में वह परमात्मा ही आता है, वही एक ही आता है। तो एक एक महात्मा थे, वो भगवान की भक्ति करते थे, तो भगवान की भक्ति करते थे, ध्यान करते थे। तो एक बार भगवान को चोर भी कहते हैं, तो एक बार जा रहे थे तो कुछ चोर मिल गए रात को, तो उन्होंने कहा कि आओ हम लोग चोरी करने जाते हैं। अब भगवान के प्रति उनका सखा भाव था, तो उन्होंने कहा कि ओहो इस रूप में मेरे कृष्ण ही मिल गए हैं, चलो चोरी करने जाते हैं। अब चोरी करने गए, अनेक कहानियां इस प्रकार की भक्तों की, हम तो बहुत बार सुनाने जाते हैं तो दो तीन को एक में मिला देते हैं। तो क्योंकि तात्पर्य से मतलब होता है। तो फिर वो गए जब वहां पर, तो चोर लोग धीरे धीरे चोरी करने लगे। एक जगह उन्होंने देखा एक कमरे में दीपक जल रहा है, तो ये जो भक्त थे भगवान के, ये वहीं घुस गए, संत थे वो, तो संत थे तो वहीं घुस गए, तो देखा कि भगवान है और सब है ऐसे, तो उन्होंने घंटी बजा दी। अब घंटी बजा दी तो घर के लोग जाग गए और खूब उनकी पिटाई की। अब उसके बाद में क्या हुआ कि प्रातः काल उनको उनके ऊपर चोरी लगी, वो तो चोर तो सामान लेकर भाग गए और जेल में डाला गया और वहां भी पिटाई हुई। अब जब वो थानेदार आया तो उसने कहा ये तो संत है, महात्मा है, ये तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, कुछ भूल हुई है, क्षमा वमा मांगी, उनको छोड़ दिया गया। अब बहुत चोट लगी थी तो उनके मलहम लगाने लगे। तो किसी ने पूछा कि आपके साथ जो चोरी करने गए थे वो कौन थे, बोले जो अभी मलहम लगा रहा है ना, कराहते कराहते बोले जो मलहम लगा रहा है वो ही मेरे साथ चोरी करने गया था। तो वो एक ही भगवान को देखते थे, एक ही चैतन्य को देखते थे, तो ईश्वर एक है या तत्व दृष्टि है। अब क्या है, भगवान शंकराचार्य यहां स्पष्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग समझेंगे बड़े आनंद से। तो कहते हैं यद एव इह कार्यकरणोपाधि समन्वितम संसार धर्मवद अवभासमानम अविवेकिनाम तदेव स्वात्मस्थम अमूत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। अब क्या कहते हैं कि इस लोक में जो कार्यकरण देह इंद्री के रूप उपाधि से युक्त होकर और अविवेकियों को संसार धर्म युक्त लग रहा है, इस लोक में संसार धर्म युक्त भास रहा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये पवित्र है ये अपवित्र है, पापी है पुण्यात्मा है, इसी में हमने अपनी बुद्धि को उलझा रखा है महाराज, क्या करें, ये असुर है ये राक्षस है, ये भक्त है ये देवता है, ऐसे उलझा के रखा। तो संसार धर्म युक्त भास रहा है, लेकिन स्वस्वरूप में स्थित वही ब्रह्म अन्यत्र, अन्यत्र जो अमूत्र अमूत्र कह रहे हैं ना, तो मूल मंत्र में तो अर्थात देहादि से परे नित्य विज्ञान घन स्वरूप और संपूर्ण संसार धर्मों से रहित ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। वह ब्रह्म भूत भौतिक से परे है, वह माया से परे है, ये हम लोग जानते हैं, वह दृष्टा से भी परे है, वह प्रपंच से भी परे है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो संसार धर्मवद भासता है वही असंसारी संसार धर्म वर्जित ब्रह्म है। तो ये बात तो समझ में नहीं आती कि कैसे ये बात है। तो कहा कि संसार धर्म क्या है, तो या तो पांच कोष ले लो, तो या तो हम देह को लेकर जन्म मरण वान बनते हैं, अथवा हम प्राणों को लेकर भूखे प्यासे बनते हैं, होते हैं जब ये लगे रहते तो होता ही है, और अथवा तो हम संकल्प विकल्पवान बनते हैं मन की उपाधि से, अथवा हम बुद्धि की उपाधि से तर्क वितर्क करते हैं, विचार करते हैं, अथवा ये सब पसारा शांत हो जाता है और हम शांति में आनंदमय कोष में पहुंच जाते हैं। यहां तक की बात सबको समझ में आ जाती है। एक लड़का है दिल्ली का, वो विदेश गया था, तो वो बोलता है कि हम यूएसए गया, अमेरिका, तो वहां से आया तो वो बोलता वहां वेदांत कोई नहीं समझता, भले कितने भी वहां पढ़ाने वाले जाएं, और श्री महाराज जी ने ये बात कही थी हमसे एक बार, पर वहां कोई नहीं समझता, वो सब शांत हो जाए, पंचकोश शांत हो जाए, ये शांति वाली बात तक तो समझते हैं, क्योंकि देह में ही बैठे रहते हैं। देह को छोड़कर परे की कोई बात होती है, वहां हमने बहुत ढूंढा, एक व्यक्ति जितने सत्संग होते थे उसमें एक सत्संगी कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस बात को समझे कि ये शांति भी एक कोश है। हमारा मन बुद्धि शांत हो गए हैं, यह आनंदमय कोश है, तो ये भी एक संसारी धर्म है। और ब्रह्म क्या है, कहा संसार धर्म वर्जित और निर्विशेष है, उसे पांच कोशों से परे है। तो यहां जो यह हम ले रहे हैं, क्योंकि व्यवहार में ले रहे हैं, ये कार्यकरणोपाधि इसमें तो है, सर्वत्र कार्यकरणोपाधि, कहीं कहीं कार्यकारणोपाधि भी लिया गया, तो वो क्योंकि व्यवहार की प्रधानता है इसलिए कार्यकरण उपाधि ही लेनी चाहिए। कार्य अर्थात देह ये संघात, और करण अर्थात इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां, वो आपकी जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, उनको ले लिया गया। तो अब ये भेद क्या है, ये जो भेद भास रहा है वह भ्रांति है, भ्रम है, भ्रम के कारण हम भेद देखते हैं। तो इसमें ये जो भेद भ्रांति है, इसके लिए भेद भ्रांति पांच प्रकार की होती। तो क्या भेद भ्रांति होती है, तो कहा जीव और ईश्वर में भेद, आप सब जानते हैं वेदांतों में सुना, तो जीव और ईश्वर में भेद, जीव और जीव में भेद, जीव और जगत में भेद, जगत और जगत में भेद, और जगत और ईश्वर में भेद, ये पांच भेद भ्रांतियां, इनको भेद भ्रांति हम कहते हैं। तो ये भ्रांति बनी रहती है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और ये कोशों की जो उपाधि लगी हुई है, तो ये कोशोपाधि विवक्षायाम जाति ब्रह्मैव जीवता, ये कोश की उपाधि के कारण ये ब्रह्म ही जीवत्व को प्राप्त हो रहा है, ये उपाधि लगी हुई है। और जब उपाधि लगी रहेगी, दो हो जाएंगे, तो निर्विशेष नहीं होगा, विशेषता की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसमें विशेष हो जाएगा, तब हम विवेक करना पड़ेगा, और यदि विशेषता नहीं है तो विवेक किसका करोगे, जब दो ही नहीं है तो आप विवेक पृथककरण कैसे करेंगे। तो इसलिए ये भेद भ्रांति बनी रहती है, तो भेद भ्रांति बनी रहती है तो हम अपने आप को जीव और ईश्वर को अपने से पृथक कहीं और मानते हैं। इस भ्रांति की निवृत्ति के लिए जो विवरणकार हैं प्रकाशात्मयति, जिन्होंने पंचपादिका पर विवरण लिखा, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर भेद भ्रांति की निवृत्ति के लिए प्रतिबिंबवाद भी उसको बोलते हैं, तो प्रतिबिंबवाद लिया। तो उसमें क्या है कि भ्रांति क्या है, ये भ्रांति होती है कि जैसे दर्पण में आप प्रतिबिंब देखते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन एक भ्रांति यह हो जाती है कि वह प्रतिबिंब सत्य है,